ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। श्लोक संख्या 16। नाशको विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, तत्वदर्शनी यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत्य अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम्। सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्। सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो पूरी श्री ध्यान में है क्या क्या हो रहा है। 13वें श्लोक में भगवान ने कहा था, किस विषय में कहा था? 13वें श्लोक में देह परिवर्तन, शरीर बदलता है आत्मा नहीं बदलता। तो शरीर में जो परिवर्तन आता है उसके बारे में उन्होंने कहा था, कौन से श्लोक में? 13वें श्लोक में। फिर 14वें श्लोक में उन्होंने कहा कि इंद्रियों के सुख और दुख बदलते रहते हैं। पहले तो 13वें श्लोक में कहा कि देह बदलते रहता है, शरीर बदलते रहता है। फिर उन्होंने कहा कि इस शरीर के संबंधित जो सुख और दुख है, शरीर से रिलेटेड जो सुख और दुख है, वो सुख और दुख भी बदलते रहते हैं, है ना? शरीर भी बदलते रहता है, शरीर से रिलेटेड सुख और दुख भी बदलते रहता है। विश्वास किस पे रखेंगे? मात्रा कल्पास करती है शीतोष्ण सुख दुख का, कि सुख और दुख भी परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है, और हम देने के लिए लाला ही है। नहीं, हमारा सारा जीवन दोनों के चक्कर में व्यर्थ रहता है कि नहीं? तो ये दोनों श्लोक में ये कहा गया है। अब पंद्रहवें श्लोक में जो भगवान ने कहा है क्या, यम ही नतयन पुरुषम पुरुषोत्सव सम दुख सुखम धीरम, या धीरम की बात बताइए, सो अमृतत्वाय कल्पते। मतलब यदि ध्यान से देखें तो तेरहवें श्लोक में उन्होंने बताया है कि धीर पुरुष क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, धीरम सत्रण मुह्यति मोहित नहीं होते हैं। मतलब धीर पुरुष जो होते हैं वो मोहित नहीं होते, मतलब यह बात वो नहीं करते, मोहित होने के बाद वो नहीं करते हैं। फिर आगे के श्लोक में चौदहवें श्लोक में बताया गया कि वो मोहित नहीं होते हैं, यह बात यदि वो नहीं करते हैं, ये काम यदि वो नहीं करते तो कौन सा काम करते हैं, तो कौन सा काम करते हैं, मात्रा स्पर्शा सुखते हैं शीतोष में सुख दुख का, मतलब वो कौन सा काम करते हैं, सहन करते हैं, सहनशील होते हैं। तीसरे श्लोक में, तेरहवें श्लोक में कहा है कि वो मोहित नहीं होते हैं, फिर चौदहवें श्लोक में कहा कि सारी बातों को सहन करते हैं, जब क्या करते हैं तो सहन करते हैं, क्या नहीं करते हैं तो मोहित नहीं होते। मोह कितने प्रकार का है उसके बारे में चर्चा हुई है कि मोह व्यक्ति को किस प्रकार से भ्रमित कर देता है, भयभीत कर देता है और संदेहजनक मनुष्य का स्वभाव कैसे हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति विषय को संदेह करता है। तो ये तीन बातें मोह के, तीन प्रकार के मोह होते हैं, परंतु जो धीर पुरुष होते हैं इन सब बातों को क्योंकि मोहित होते हैं, मोह उनके ऊपर आता है, माया स्वभाव करके पुष्ट भी होता है, तो वो सारी बातों को सहन करते हैं बस। लेकिन सहनशीलता उनकी स्ट्रांग है, तो हम चर्चा यही करेंगे कि सहन करना, सहन करके आना चाहिए, इसे संसार में सुख और दुख गारंटेड है, कोई बोले तो कोई ऐसा होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल, कोई केवल सुख यदि मानता है पॉसिबल नहीं, सुख चाहिए दुख भी नहीं लेना पड़ेगा, सुख के साथ दुख आएगा भी आएगा, इसलिए वो सहन करने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। तो हमको पता है कि बारिश आएगा ही आएगा, दो तीन महीने का जो बारिश का तीन महीने का समय होता है उसमें दस दिन ट्रेन बंद रहेंगे, तो हमने पहले उसकी तैयारी कर लेना चाहिए, हम करते भी हैं। पर जब सुख और दुख की जब बात आती है तो जब दुख आता है तो हम सहन नहीं कर पाते, परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो हमारी श्रद्धा खत्म होने लगती है, संदेह करने लगते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बार बार आदेश दे रहे कि सहन करो। अब देखिए जैसे कि तेरा अगले श्लोक में कहा है कि मोहित नहीं होते हैं, चौदहवें श्लोक में कहा कि वो सहन करते हैं, अब पंद्रहवें श्लोक में कह रहे हैं कि सहन करने से फायदा क्या है, ध्यान से सुनिए, बारहवें श्लोक में, तेरहवें श्लोक में, चौदहवें और पंद्रहवें एक दूसरे से संबंधित श्लोक है। फिर से बताता हूं, तेरहवें श्लोक में क्या कहा है, जो धीर पुरुष होते हैं वो क्या नहीं करते, वो धीरे तत्व में होती मोहित नहीं होते हैं। फिर मोहित नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, सहन करते हैं, मतलब वो सहनशील होते हैं, मात्रा संसार सुखते हैं सुतोष में सुख दुख का आगो पायन पांच प्रतिशत बाहर का प्रतीक्ष। तो इस प्रकार से सहन करते हैं, फिर क्या सहन कर दिया, ठीक है सहन कर लेते। अच्छा बताइए, मान लो मैंने सहन कर लिया, कुछ लाभ है क्या, इस संसार में हम रहते हैं, कोई भी हमसे कुछ बात करते हैं तो हम पहले क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कुछ लाभ है क्या, कुछ लाभ है तो आगे भी बात करेंगे, कुछ लाभ नहीं है तो क्या के लिए बात करेंगे, हा? तो भगवान ये जानते हैं, तो भगवान इस श्लोक में बड़े सोच के बता रहे हैं, सोच रहे कि ये सोचेंगे कार्य दुख ली के जो सोचेंगे, इतनी से लंबी सीरीज बता दी, इसका लाभ क्या है, क्या फायदा है, हाँ तो इस श्लोक में फायदा बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, उसको क्या प्राप्त होगा, अमृतत्वाय कल्पते, मतलब उसको मुक्ति मिल जाएगी, भगवत प्रेम मिल जाएगा, भगवान का दर्शन साक्षात्कार प्रेम आशीर्वाद कृपा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, हाउ व्हाट व्हाय, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, तीन प्रश्न आपको पता चले, तीन प्रश्न का उत्तर भी पता चला, नहीं चला तो एप्लीकेशन में क्या देरी हो रही, अप्लाई क्यों नहीं होता है, उसका प्रात्यक्षिक क्यों नहीं होता है। इस श्लोक की विशेष बात यह है, अभी तक पहली बार भगवान ध्येय के बारे में बोले हैं कि हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है, क्या है गोल ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हाँ? मुक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, भक्ति मुक्ति प्रेम प्राप्ति, एक ही नहीं है। इस श्लोक में प्रथम बार भगवान बोलते हैं अमृतत्वाय कल्पते, मतलब आपको वो आनंद प्राप्त हो जाएगा जो आध्यात्मिक दिव्य है, जो व्यक्ति गृहस्तत्व है, जो व्यक्ति सहन करता है। अब देखिए फिर से गिने, गृहस्तत्व व्यक्ति क्या नहीं करता, मोहित नहीं होता है, मोहित नहीं होता है तो क्या करता है, सहन करता है, तो सहन करता है तो सहन करने के लाभ क्या है, अमृतत्वाय कल्पते, दिव्य ज्ञान दिव्य आनंद की प्राप्ति, मुक्ति भक्ति कृपा शक्ति सब प्राप्त हो जाता है। तो ये चार श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, यह श्लोक बहुत ज्यादा महत्व का है, क्योंकि इसे पहली बार भगवान इस बात को बताया है अभी तक भगवत गीता में, है ना, इसके पहले दिशा में कि भगवान ने ऐसे कहा कि ऐसा करोगे तो आपको अमृतत्व अमृततुल्य प्रेम आनंद प्राप्त हो जाएगा, जो कल्पना करे कल्पते, जो ध्येय है, कल्प मतलब ध्येय, कल्पते मतलब ध्येय, जो आपका गोल ऑफ लाइफ है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, वो उद्देश्य किस बात से पूर्ण होगा, सहनशीलता बढ़ाना है कि नहीं, कनेक्शन, यदि हम कुछ भी बनना चाहे जीवन में, डॉक्टर एडवोकेट बैरिस्टर इंजीनियर मिनिस्टर कुछ भी बने, कुछ भी बने, धीरे धीरे मेरी सर्वोच्च ध्येय हमारा है, सबसे ऊंचा ध्येय भी हमारा है, तो इसका बेसिक जो क्वालिफिकेशन है पात्र का है वो क्या है, क्या है, सब कुछ हम सबको समझ में आया, मुझे भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे, हम सबको आया है सहनशीलता, सहनशीलता बढ़ानी चाहिए गुरु जी, क्योंकि हम जिस धाम में रहते हैं धरातल पे, इस धरणी पे हम रहते हैं, इसका नाम ही वो है दुखा है मचा स्वतः, तो दुख तो आएगा आएगा ही आएगा, और उस समय तक हमारी सहन शक्ति बढ़ी नहीं तो दुख तो हमको खा जाएगा, हमने दुख को सहन करना चाहिए, दुख को हमने खा जाना चाहिए, दुख को हमको खाने नहीं देना चाहिए, है कि नहीं, तो दुख तो आएगा, मुक्ति के पात्र कौन है, तो जो सहन करता है, क्या सहन करता है, हाँ? कौन बोला सुख दुख, कौन बोला, मेरी बात है, जो सुख को भी सहन करते हैं और दुख को भी सहन करते हैं, सुख और दुख दोनों को जो सहन करते हैं उसको सहनशील कहते हैं। महाप्रभुपाद महाराज के तात्पर्य में उदाहरण दिया चैतन्य महाप्रभु का, 24 वर्ष की आयु में उन्होंने कन्यास ग्रहण कर लिया, कितनी सहनशीलता है देखिए, 24 वर्ष की आयु मतलब कौन सी आयु, महा अस्थि, जो गंभीर हुए होते हैं, गंभीर हुए पर बहुत ज्यादा भ्रम, बहुत ज्यादा अस्थिरता, बहुत ज्यादा आकर्षण, बहुत ज्यादा चंचलता, ये गंभीर में होता है। कोई भी एक बात को बहुत स्थिर में होता है। तो इस उम्र में गोपाल द्वारा चैतन्य महादेव का जो ध्यान, मेरे संन्यास ग्रहण किया, सारी जो चंचलताएं है और अस्थिरता सभी को सहन किया। इस प्रकार से सहन करना चाहिए। तो यम जीना व्यतीयते पुरुषम पुरुष से, अर्थात जिस पुरुष को इंद्रिय सुख या दुख, वो क्या है, यम जीना व्यतीयते पुरुष पुरुष, मतलब जिस पुरुष को इंद्रिय सुख और दुख दोनों भी व्यतीत नहीं करते। हम तो केवल दुख की बात सुनते आ रहे थे अभी तक, हमको तो इतना ही पता था कि व्यक्ति को व्यतीत करने वाला यदि कोई चीज है तो केवल दुख है कि नहीं, पर ऐसा नहीं है। सुख और दुख दोनों व्यक्ति को व्यतीत करते, पुरुष को, मनुष्य को व्यतीत करते। लेकिन इस पहले लाइन में कहा गया है पुरुष पुरुष, मतलब क्या कहा है उनको, ऋषभ, अर्जुन को कहा है पुरुष ऋषभ, ऋषभ मतलब बुल, बैल के जैसा, बैल के जैसा, मतलब बैल क्या करता है, बैल के जैसी उपमा भगवान ने यहां पे दी है, ऋषभ पुरुष शभ ऋषभ, बुल क्या करता है, बैल क्या करता है। सेवा करता है और सहन करता है, भगवान इसलिए ऋषभ कहा है। वो सेवा करते रहता है और दूसरा काम बोल, देखिए सहन भी कितना करता है, कितना उससे काम करवा लेते हैं, भूख लगे प्यास लगे काम करते रहता है, धूप के चटके बैठते, ठंडी में ठंडी लगती है, बारिश में पानी लगता है, सहन करता है। अपने लिए करता है क्या, दूसरों के लिए सहन करता है। तो इसमें सेवा भाव जो दूसरों के लिए किया जाता है सेवा भाव है, और क्वालिटी क्या है, सहनशीलता, टॉलरेंस। तो ऋषभ यहां कहा गया है वो क्या करते हैं, दो व्यक्ति क्या करते हैं, सहन भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। कहने की मैं तो बहुत सहन करता हूं लेकिन बड़ा स्वार्थी हूं, सिर्फ अपने लिए करते, सहनशील तो बहुत है पर केवल अपने लिए नहीं। ऋषभ ऐसा नहीं है, ऋषभ सेवा करता है और सहन करता है, पुरुष ऋषभ। तो जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को सहन नहीं करता, उस व्यक्ति को विपाद पशु कहते हैं, दो पैरों वाला पशु। क्योंकि पशु भी केवल बैल को छोड़ दें, बैल और गाय के अतिरिक्त कोई भी पशु ले ले तो पशु क्या करता है, सहन नहीं कर पाता। भूख लगती है तो जंगल में भटकते रहता है, भटकते रहता है, सहन नहीं करता है, भूख सहन नहीं होती। जो इस तरह पशु होते जो सामने आया उसको मार के खा देते हैं, बाकी दूसरे पशु यहाँ वहां घूमते हैं। इवन बकरी कुत्ता ये भी देखिए, कुत्ते को भूख लगती है तो जो घूमते रहता है घूमते रहता है घूमते रहता है, रुकते ही नहीं, चलते रहता है चलते रहता है, सहन नहीं कर सकता, भूख को सहन नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से इंद्रियों के जो आवेग है, इंद्रियों के जो आकर्षण है, जो डिमांड है, उसको जो सहन नहीं कर सकता, उसको नीति शास्त्र पशु कहते हैं। देयर इज नो डिफरेंस, सहनशीलता नहीं है, सेवा भाव नहीं है, तो कोई पशु नहीं है हमारे में, नो डिफरेंस है कि नहीं, आपको क्या लगता है, हा? सही बात है कि थोड़ा भाई भाई सही बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से सुख और दुख दोनों को सहन करना चाहिए। जो व्यक्ति पशु जैसा होता है उसके जीवन के केवल दो उद्देश्य होते हैं, वो क्या होते हैं? सुख प्राप्ति के लिए भयंकर प्रयास और दुख से छूटने का अति प्रयास। मतलब सुख को प्राप्त करने के लिए हमेशा 24 आवर्स, सुख मतलब कौन सा? इंद्रिय सुख, और दुख से छुट्टी करने के लिए पूरा दिन रात प्रयास। ये दो ही उद्देश्य से जीवन इस व्यक्ति के जीवन के होते हैं, जो कि पशुओं में भी होते हैं। ठीक है, पशुओं के क्या उद्देश्य होते हैं? यही बात है, दुख से फ्रीडम, मुक्ति और सुख की प्राप्ति। दुख से मुक्ति, सुख से सुख की प्राप्ति, यही काम पशु का है, जानवर का है, वही काम उन्हीं का है जो सहन नहीं करते हैं। अब ये जो मनुष्य योनि मिली है, आप सोचिए, मनुष्य योनि ना तो सुख भोगने के लिए मिली है ना तो दुख भोगने के लिए मिली है। इनके किसी, ये दोनों में से किसी भी वस्तु का, विषय का भोग करने के लिए मनुष्य योनि मिली है। दुख का भी भोग करना नहीं है हमको, और सुख का भी भोग नहीं करना है मनुष्य योनि। देखिए, जो जानवर होते हैं वो दुख दुख भोगते हैं, दुखी हो जाते हैं, सहन नहीं करते, कि दर दर भटकते हैं, क्योंकि दुख को भोगते हैं। हमको दुख को भी भोगना नहीं है, दुख को सहन करना है उसको। मैं भोग दुखी हूं, भोगते रहो, नहीं, सहन करना है। ठीक है, सुख को भी सहन करना है। इसलिए इस मनुष्य योनि का ये धर्म नहीं है सुख और दुख को भोगना, ये मनुष्य शरीर का स्वभाव ही नहीं है, धर्म ही नहीं है। मनुष्य शरीर का धर्म नहीं है, तो क्या धर्म है? मनुष्य शरीर का यदि ये धर्म सुख और दुख भोगना, यह यदि धर्म नहीं है तो फिर क्या धर्म? धर्म तो फंक्शन ही, क्या फंक्शन है मनुष्य शरीर का? आत्म साक्षात्कार, दिव्य प्रेम की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति, दिव्य प्रेम की प्राप्ति। मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर, ये मॉडल जो हमको मिला है, ये मॉडल का नेचर या फंक्शन ही ये है कि दिव्य प्रेम की प्राप्ति, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। ना कि सुख और दुख को भोगते रहने के लिए शरीर मिला है, वो सहन करना है हमको। इसलिए हमेशा ध्यान में, तभी जाके हम परम शांति प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा परम शांति बहुत मुश्किल है। सबका उद्देश्य है परम, बिली बिली। इस प्रकार से सुख को तो सहन करना ठीक है, बाद में देखेंगे। हम सोचते सुख को तो भी आसानी से सहन कर सकते सुख को सहन करना चुटकी का खेल है, आप बताइए दुख को कैसे सहन करेंगे? नहीं, सबके सामने बड़ा प्रश्न, हम सबके सामने सुख को सहन करेंगे वो तो आप बताइए मत चलेगा लेकिन दुख को कैसे सहन करें? तो दुख का कारण क्या है? दुख को हमको सहन करना है, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है सुख की इच्छा, नहीं है कि नहीं? सुख की इच्छा सहन करने के लिए भोगने की, सुख भोगने की जो इच्छा है वही तो दुख का कारण है। तो आप सोचिए, अब सुख भोगने की इच्छा यदि काम 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 रिड्यूस रिड्यूस हो जाएगी तो दुख आएगा कि दुख क्यों आएगा? हम सोच रहे दुख आता क्यों है, पर दुख आता इसलिए क्योंकि सुख भोगने की कामना है, इसलिए दुखी हो जाते हैं। क्योंकि प्रकृति का स्वभाव तो वही है कि वो सुख भी देगी और दुख भी देगी, एक चीज कोई नहीं देगी, किसी को नहीं, परंतु हमारी नित्य सुख ही भोगने की लालसा होती है, इसलिए उस लालसा के कारण, उस इच्छा के कारण दुख आ जाता है। ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब अंदर मन में कहीं पे सुख की कामना होती है, विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होगी, जो चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, सब और होते जा रहा है, बड़ा भयंकर होते जा रहा है, सब कुछ उल्टा पुलटा होता है, जो सोचता है वो होता ही नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होता है, प्रतिकूल होता है सब। पर वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अंदर के सुख की कामना मन में दबी रहती है, सुख कैसे बैठी रहती है, छुप के छुपी हुई है, छुप लिया है, छुपा लिया है अपने आप को, फटाक से कहीं बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम सावधानी से सुख की आशा का त्याग करें, सावधानी से, तो क्या होगा, तो हम प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होंगे। सावधानी से सुख भोगने की इच्छाओं को कम करते जाएंगे, सावधानी से, ये नहीं बोलेंगे फटाक से एक दिन में संन्यास ले लो, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल शास्त्र व्यवस्था के लिए है, ये बात ध्यान में रखिए, संसार में 99.9% विरक्त है, तो शास्त्र करता है 1% क्या अर्जुन तो विरक्ति है, समझा क्यों अर्जुन, भगवान चाहते हैं ऋषि को चुन सकते थे ज्ञान देने के लिए, एक बहुत बड़े भाई को 60,000 वर्ष तक जिसने तपस्या की उनको भगवत गीता बताया, ऐसा कर सकते थे भगवान, पर उन्होंने क्या किया, ऐसे गृहस्थ को चुना जो कि साधारण गृहस्थ नहीं है, उसके पीछे तो पूरे राज्य का व्याप लगा हुआ है, कई जिम्मेदारियां है उसके पीछे, ऐसे व्यक्ति को चुना है, मतलब ये चीज किसके लिए है, गृहस्थ के लिए है। तो यहां कहा गया है कि प्रतिकूल परिस्थिति को, मतलब दुख को सहन करने की शक्ति हमको प्राप्त होगी जो हम सुख की कामनाओं को धीरे धीरे आराम से, प्रेम से, शांति से, एक 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 क्रम करें, है कि नहीं। एक कभी हफ्ते में एक दो बार पिज्जा खाने की याद आती है, इटालियन पिज्जा, मंगोलियन, क्या इटालियन पिज्जा, मंगोलियन हमका, ब्रिटिश हमका, अमेरिकन जो भी है, फलाना ढिकाना, सब ये सब खाने की इच्छा आजकल होती है, चाइनीज कुछ सब सारे देशों का खाने की इच्छा होती रहती है। तो ये चाइनीज, इटालियन, थाईलैंड, जापानीज, रशियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, इसको रिड्यूस करना चाहिए धीरे धीरे, प्रेम से, शांति से, नहीं तो क्या होगा, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत में जो वातावरण है उस वातावरण में जो बनता है वही हमारे शरीर को सूट होगा। अब चाइनीज खाएंगे, चाइनीज लोग तो इतने छोटे होते हैं, हम तो इतने बड़े हैं, वो उनके शरीर को बराबर सूट होता है, हमको नहीं होता, हम वो खाएंगे तो हमारे शरीर प्रतिकूल प्रतिसाद देगा, कुछ कुछ दुख कर देगा। तो ये जो डिजायर, सुख की कामना, मतलब जो जीव की इच्छा, जीव की, जीव को जो टेस्ट चाहिए भोगने का, सुख भोगने का है जीव को, उसको जरा थोड़ा सा प्रेम से, बहुत प्रेम से, क्रोधित होकर नहीं, क्रोधित हो जाएंगे तो फिर मन क्या है, मन को अच्छा नहीं लगता है, क्रोध अच्छा नहीं लगता है, इसलिए प्रेम से क्या शुरुआत को मन को समझाइए कि नहीं ये हम यार रहते हैं, यहाँ की वस्तु खाएंगे, है कि नहीं, भारतीय वस्तु खाएंगे, तो धीरे 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 क्या होगा, सुख की कामनाएं कम हो जाएगी। तो एकादे संडे को प्रभु जी ने माता जी को कोई रेस्टोरेंट में नहीं भी लेके गए, क्या इटालियन वगैरह वगैरह जो भी हमको पता भी नहीं, ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं भी लेके गए तो माता जी को कुछ दुख होगा, क्या कोई तकलीफ होगी, नहीं होगी, क्योंकि उनको ये एडजस्ट कर दिया है प्रेम से, ठीक है पिछली बार भी नहीं खाया था, अभी भी फर्क भी नहीं पड़ रहा है, चलो ठीक। तो इस प्रकार से धीरे 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 इस बात को आपको अपने आप को समझाना है, दूसरे को नहीं समझना है, अपने आप को समझाना है कि हमारी सहनशीलता बढ़ानी, और नहीं बढ़ाते हैं तो नुकसान किसका है, 5-25 साल बाद वो सब जो भी कुछ खाया है रिएक्शन नहीं देगा, जो इनपुट डालेंगे आउटपुट नहीं डालेंगे, है कि नहीं, एवरी रिएक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आएगी रिएक्शन, तो रिएक्शन तो सहन करना, फिर सहन करना तो पड़ेगा, तब डॉक्टर बोलेंगे इसलिए सहन करेंगे, अब पहले शास्त्र बोल रहे इसलिए फर्क जाने दे, तब जब डॉक्टर बोलेगा आपको कोई इलाज नहीं है, करना करे, अच्छा ठीक है, तो इसलिए सहनशीलता बढ़ाइए। और जब हम सहनशीलता इस प्रकार से धीरे धीरे शांति से समझ के बढ़ाएंगे, तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, दुख हमारे ऊपर आएगा, तब हम उस दुख को, उस प्रतिकूल परिस्थिति को सहन कर पाएंगे, है ना? नहीं तो बड़ी मुश्किल है। सहन करना ही बहुत मुख्य प्रिंसिपल है हमारे जीवन का। यदि हम सावधानी, जैसे कोई रोग, रोग दूर करने के लिए क्या करते हैं, कड़वी दवाई खाते हैं। कोई बहुत बड़ा बीमारी हो लग जाए, जॉन्डिस जैसा छोटा है ना, तो ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाई औषधि जो होती है कड़वी होती है, तो कड़वी दवाई खाते हैं। यदि आप बोले नहीं कड़वी दवाई हमको सहन नहीं करेंगे, मीठी चाहिए, क्या होगा, रोग दूर होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा ना। किस लिए सहन कर रहे हैं आप, दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए? तो सहन किस लिए करता है व्यक्ति? पैर में काटा चूक गया बहुत जोर से, ऐसा फूंक मार के निकालेंगे क्या, उसको निकलेगा वो कैसे निकलेगा? पैर में जो काटा चूक गया है वो कैसे निकलेगा? काटे से निकलेगा ना। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, काटा मुझे बहुत डर लगता है, बहुत दुख होता है, बड़ी वेदनाएं होती है, काटा मत दीजिए, काटे से मत निकालिए। पर आप क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे निकालिए निकालिए, जल्दी निकालिए, और बड़ा सुई निकालिए कि उसको निकालिए, दुख सहन करूंगा अभी 2 मिनट का, ठीक है, पर काटा निकल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सुख मिलेगा। तो सहन करने की शक्ति यदि बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर सुख मिलेगा। पर उस सुख को भी सहन करते आना चाहिए ना प्रीति। मान लो दुख को सहन करते करते सुख मिल रहा है, तो सुख को भी सहन करना पड़ता है, नहीं? सुख को भी सहन करते आना चाहिए। सुख को सहन, सुख में व्यतीत होने के कारण भी छे, सुख में सुख प्राप्त हो गया, लेकिन सुख से भी व्यतीत हो जाता है, दुखी हो जाता है, सुख से व्यतीत हो जाता है। क्यों व्यतीत हो जाता है? उसके 6 कारण है। पहला कारण है काम। जब व्यक्ति को सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है, तो इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं बढ़ती है, नहीं? देखिए, सुख में सहन किया, सुख प्राप्त हुआ, सुख में सुख प्राप्त हुआ, और यदि सुख को सहन करने की प्रैक्टिस नहीं है, तो काम क्रोध मोह मद मत करे, ये सबसे सब भयानक बन जाते हैं। मतलब सुख में भी हम व्यतीत रहते हैं, सबको आवाज आ रहा है, सुख में भी हम व्यतीत रहते हैं, दुख में भी व्यतीत रहते हैं, सुख में भी काम, बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। तो जब सुख प्राप्त होता है तो काम बढ़ जाता है, इंद्रिय सुख प्राप्ति की कामनाएं बढ़ती रहती है, और ये काम जो है वो आग में घी डालने का काम करता है। आग ऑलरेडी लगी हुई है और इसमें घी डालने का काम यदि कौन करता है, कोई, तो कामना है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, ये कामना है। तो आज तो और सुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सुखी है, लेकिन कामना इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं इतनी हो रही है कि बार बार मन तीर नहीं रह रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है, भटक ही रहा है। बड़े सुखी है लेकिन एक मिनट का चैन नहीं, उनको एक मिनट भी किसी के साथ बात नहीं कर सकते क्योंकि बड़े परेशान है, मन एकदम उल्टा फुलटा हो गया है अंदर है? उनके उनको विचारों से शांति में विचार चल रहे, विचार चक्र इतना जोर से घूम रहा है जैसे सुगर स्कूल घूम रहा है अंदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से सुख भी है तो सुख को भी सहन करके आना चाहिए, और सहन नहीं करने का पहला कारण है काम, दूसरा कारण क्या है क्रोध। ये क्रोध का क्या है, जब व्यक्ति कोई सुख की सुखी रहता है तो सुख के समय और सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, अनेकों अनेक कामनाएं होती है। हमारे घर पे कौन सा एलसीडी टीवी है तो अब उससे काम नहीं चलेगा, उसके बाद क्या होता है थिएटर कुछ होम थिएटर, मतलब इसका अर्थ क्या है, बड़ा सुंदर नाम है, अपने होम को ही थिएटर कर दो। हाँ, हमारी संस्कृति है हमारे होम को मंदिर बनाओ, घर एक मंदिर होता है, प्रभुपाद महाराज कहते हैं अपने घर को मंदिर बनाओ, और आज की कल्चर क्या कहती है होम थिएटर, उस घर को थिएटर बनाओ। थिएटर में क्या होता है, सिनेमा होता है, और सिनेमा का अर्थ क्या है, मदर ऑफ ऑल थिंग्स, पाप की जननी, मतलब हमारा घर सारे पापों का केंद्र बिंदु बनाओ, ये हमारा मिशन है कलयुग। इस प्रकार के प्रत्येक घर जब पाप का केंद्र बनेगा तो एक ऐसा समय आएगा कि जैसे पाप के कुत्ते एक गली में जमा हो जाते हैं तो ये कैसे झगड़ते हैं, मारते एक दूसरे को खत्म करने के, हाँ हाँ हाँ, इस प्रकार से पूरा संसार कुत्तों से भर जाएगा, कोई मनुष्य नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल नहीं दिखेगा 15-20 साल में भी। इसी प्रकार से होता रहा, होम थिएटर बहुत ज्यादा अभी सेल हो गए, मार्केट इनका हाई हो गया, तो संसार में भयंकर बातें होने लग जाएगी क्योंकि शांति नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से होम थिएटर है, यदि होम थिएटर के आगे और भी कुछ है तो वो भी उनको चल रहेगा, पर जब वो प्राप्त करना है फिर गाड़ी है, मर्सिडीज है, उससे बड़ी कोई और कोई बड़ी कार है, फरारी है, तो ये बोल रहे फरारी है, फरारी से भी काम नहीं चलेगा तो फरार होना पड़ेगा, संसार से फरार होना पड़ेगा, क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर चाहिए, क्या करेंगे, नई कार, जब ये सब चाहिए 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 चाहिए, अब ये प्राप्त नहीं हो रहा है और कोई व्यक्ति या कोई विषय ये प्राप्ति के बीच में रोड़ा डाल रहा है, आड़े आ रहा है, तो क्या होगा, क्रोध आ जाएगा, भयंकर क्रोध आ जाएगा नहीं। और क्रोध आने से हमारे सुख को हम सहन नहीं कर पाएंगे, जो व्यक्ति सुखी होता है वो ज्यादा क्रोधित रहता है, ऐसा क्यों कह रहे साधारणतः शास्त्रों में नहीं लिखा है, जनरली कैसे लगे, क्योंकि क्रोध इसलिए आता कि मेरी बात पूरी कैसे नहीं हो रही, तो क्रोध फिर सुख को सहन नहीं करने देने वाला तीसरा कारण है लोभ। ये लोभ तो बड़ा धन कहती है, मैंने बहुत बार सुना है कि व्यक्ति दूसरे से असंतुष्ट रहता है, क्या वो व्यक्ति वो भाव तो ऐसे है, ऐसे वो व्यक्ति ऐसे ही रखा जाए, असंतुष्ट है दूसरे के प्रति, है ना, ये बहुत कॉमन बात है ना, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी के प्रति असंतुष्ट है, लेकिन अगर आपने लिस्ट को स्कैन कीजिए तो आपको याद आएगा मैं इसके असंतुष्ट हूं, इसके असंतुष्ट, बहुत कॉमन बात है। पर जो व्यक्ति अपने आप से जो असंतुष्ट होता है वो लोभी व्यक्ति, अपने आप से स्वयं भी असंतुष्ट रहता है, कभी स्वयं के प्रति संतुष्टि हुई नहीं, स्वयं के प्रति असंतुष्ट असंतुष्ट असंतुष्ट, कभी संतोष नहीं हो रहा है। सतुष्टा नाम की चीज ही नहीं उनके पास, चाबी नहीं है कि नहीं। समाधान इस नाम की, सेटिस्फैक्शन नाम की कोई चीज जानते ही नहीं। तो लोग बढ़ रहा है, लोग बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हमने कई बार इसके उदाहरण दिए, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति को किसी ने बताया कि राजा ने एक बार बताया कि जितना भागेंगे उतना जमीन आपको दे देंगे। बोले ठीक है, सूर्यास्त तक ही भागना है, लेकिन सूर्योदय को लेकर तो सूर्यास्त तक। बोले ठीक है। वो काफी अच्छा व्यक्ति था, बड़ा सुदृढ़ था बहुत अच्छा सूर्योदय होते थे भाग में निकला, दौड़ने का काफी अंतर क्रॉस कर लिया, बहुत सफिशियंट हो गया, काफी 50 एकड़ जमीन मिल गया दोपहर तक। तो राजा बोलने लगे, अरे आपको 50 एकड़ जमीन मिल गया है, ले लो, बहुत हो गया। अरे नहीं, अभी तो 4 ही बजता है, अभी 2 घंटा है और भागूंगा। और भागने लगा, भागने लगा, भागने लगा। सूर्यास्त होने को 5 मिनट भी बचा था, वो इतना ध्वस्त हो गया, इतना ध्वस्त हो गया कि हाथ होता था कि मर गया काम का। क्योंकि स्वयं से संतुष्ट नहीं है। और चलिए चलिए बात चलिए 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 चलिए। इसलिए हमने इसको पहले बताया था कि जब साइकिल थी तो लोग का गाड़ी का स्कूटर आ गई, तो लोग कार आ गई, तो बड़ी कार का बड़ी कार आ गई, तो बस कार आ गई, तो हेलीकॉप्टर। तो हमेशा तो बड़ी देते रही है, हेलीकॉप्टर भी आ गया तो दरिद्री है कि नहीं। समाधान यहाँ है नहीं, और तो व्यक्ति हमेशा दरिद्री रहता है, लोभी व्यक्ति हमेशा दरिद्री रहता है। तो इस प्रकार से यह लोभ हमको सुख को सहन नहीं करने देता है, सुख को भोगने की इच्छाएं नहीं कराता है हमको। फिर से शास्त्र के सुख को भोगना नहीं है, सुख को सहन करना है। भोग की इच्छा होगी तो बड़ा डेंजरस बात हो जाएगी। फिर है मोह। अब मोह के बारे में तो आप ही बताइए, इतनी बार जो क्या हुई होगी आप ही बताइए। मोह से बात करना नहीं होती है, मोह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मोह होता है। पहला प्रकार कौन सा है? पहला मूर्ख बनना, भ्रमित हो जाना। हाँ, तो पहले तो मूर्ख की बात 2 मिनट बताएंगे, फ्लैश बैक। पहला प्रकार मोह का भी बहुत महत्व का प्रकार है, भ्रमित होना या मूर्ख बनना। तो भ्रमित होना, मूर्ख बनना, इसके ऊपर एक सुंदर उदाहरण था दिया, हमने चर्चा की थी। मारी सोने का हिरण है कि नहीं? माता सीता ने सोने का हिरण देखा, फिर क्या हुआ? सब जानते हैं फिर क्या हुआ। क्योंकि वो सोने का जो हिरण देखा, वो सोने का हिरण तो था ही नहीं। होता यही है, जो दिखता है वो होता नहीं है, इसी को तो मोह कहते हैं, भ्रमित होना। फिर दूसरा मोह क्या है? घबराहट, एकदम से व्यक्ति डर जाता है मोह के कारण, कैसा होगा मेरा, ये मोह का लक्षण है। मोह को भी सहन करना, इसको भी सहन करते आना चाहिए। हमने उदाहरण दिया था, कौन सी चर्चा की थी? आचार्य की, सुभाष पंडित है ना, ऐसा नहीं हुआ उनको। अरे इतना सुंदर नाम संकीर्तन, भगवान साक्षात हमारे अंदर में नृत्य कर रहे हैं, हम नाम संकीर्तन पे नृत्य कर रहे हैं। कौन सा डर है, कहता मोह, जो कुछ भी होने दो, है कि नहीं? तो ये हो गया घबराहट। तीसरा क्या कारण बताया था? बड़ा सुंदर है संदेह, किसके ऊपर संदेह सबसे मेन संदेह ये होता है जीवन भर। वास्तव में मृत्यु के साथ जन्म वगैरह है कि नहीं है कि मजाक चल रही है सर ये सबसे बड़ा संदेह है। और इसके ऊपर हमने बहुत सारे भागवतन की चर्चा की थी, अन्य उदाहरण देखे थे बराबर। तो मोह मीन्स इस मोह को, मोह हमको सुख भोगने के लिए लालायित करता है। हम सुख को सहन नहीं कर सकते, भोगने की प्रवृत्ति हमारे में बढ़ा देता है मोह। फिर क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मोहर मज मतलब वैर अहंकार मत। इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि व्यक्ति दूसरे को श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कभी नहीं सोचता कि दूसरा व्यक्ति भी श्रेष्ठ है, ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता। मज जिसको है वो व्यक्ति हमेशा क्या करता है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं करता रहता है। और प्रकृति माया माया देवी इसको क्या करती है, बहुत अच्छा हरा भरा घास दिखा के दिखाते 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 स्लॉटर हाउस तक ले जाती है, कतर खाने तक। जो बकरा काटने के लिए ले जाते हैं उसको इसी प्रकार से बड़े प्रेम से खिला पिलाते हैं। और उसको खाते खाते जाता है, सोचता है वाह 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 क्या भूल भरा भैया, बड़ा अच्छा जीवन है, बहुत अच्छा मिल रहा है खाने को। काम इधर तलवार लटक रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है, इधर बहुत बढ़िया मिल रहा है खाने को। इसी प्रकार से ये मध वाला व्यक्ति होता है जीवन में, कौन मुझे मार सकता है, कौन मुझे दुख दे सकता है, कौन कोई कुछ नहीं कर सकता है मुझे, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं। और फिर जाके तलवार गर्दन पे, काल रूपी तलवार गर्दन पे चल जाती है। तो इसलिए मध, ये मध बड़ा डेंजर है, इससे भी हमें को हमारे अंदर सुख भोगने की लालसा बढ़ती है। विषय क्या चल रहा है, सुख को सहन करने के लिए कौन सी बाधाएं है, स्पीड ब्रेकर कौन से ऑब्स्टेकल्स है। सुख को भोगना हमको नहीं है, सुख को सहन करना है। सुख को सहन करने के क्या प्रॉब्लम्स है, सुख को सहन करने के बीच में ये छह लोग आ रहे हैं, कोई बंद बड़े डेंजर लोग हैं। तो इन लोगों के बारे में जरा समझना चाहिए, फिर है मत कर। दुर्योधन मत्सर का उदाहरण है, दुर्योधन मत्सर मतलब दूसरे से ईर्ष्या, बस दूसरे के पास कितना अच्छा है, मेरे पास कुछ भी होने दीजिए, आपके पास कितना अच्छा है, मेरे पास कुछ नहीं, आपके पास कितना अच्छा है। लेकिन दुर्योधन को पांडव के प्रति इतनी ईर्ष्या थी, भागवतम के पहले अध्याय सॉरी भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने चर्चा की है कि दुर्योधन को कहा कि युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन, ऐसा समय आया था कि युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, पर दुर्योधन कहा नहीं मुझे इनसे युद्ध नहीं करना है, युद्ध तो मैं भीम से करूंगा। बाद में भगवान कृष्ण भी युधिष्ठिर महाराज को बोले, वो तो ठीक है कि उसके अंदर मच्छर भरा भरा पड़ा हुआ है, भयंकर मच्छरी ईर्ष्यालु है वो, इसलिए यदि वो ईर्ष्यालु नहीं होता और आपसे युद्ध कर देता तो आप तो गला जलाना नहीं जानते आप तो भाला चाहते थे उसको, भाला चलाते युधिष्ठिर महाराज, आप तो ये चलाना बहुत अच्छा जानते हो, तो गला भारी है, अच्छा एक्सपर्ट है। पर देखो उसकी ईर्ष्या ने उसको मार दिया, क्योंकि यदि वो युधिष्ठिर महाराज से युद्ध करता तो भीम का नाम रहता ना संसार में भी, वो तो वास्तव में डर के मारे युधिष्ठिर से युद्ध किया दुर्योधन ने, ऐसा बोलता था संसार। इसलिए उसको ईर्ष्या थी कि भीम का नाम संसार में न हो जाए, इसलिए मरने के लिए तैयार है। देखो ईर्ष्या इतने स्तर तक ले जाती है व्यक्ति को, मृत्यु तक ले जाती है ईर्ष्या, देव खत्म कर देती है, इतनी भयंकर ईर्ष्या होती है। और ये ईर्ष्या एक हमको फिर सुख को सहन करने नहीं देती है। एक बार तुलसी का उदाहरण आप सबको पता है ना, भगवत गीता के फाइव डेज कोर्स में बताया था, गया आठ भाग का है कि नहीं। आठ एक तुलसी के भगवान, एक व्यक्ति के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान व्यक्ति बोले क्या चाहिए, तो पर एक ही बात, एक ही कंडीशन है। वो क्या है कंडीशन, जो तुम भगवान कहते हैं जो तुमको दूंगा उससे डबल मैं तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। बोले ऐसा तो भक्त बड़े इंटेलिजेंट वो इस टाइप का भक्त था, ईशानी टाइप। वो कहा ठीक है भगवान, आप एक काम कीजिए, मेरी एक आंख छोड़ दीजिए, अब मेरे पड़ोसी को आपको दो देना पड़ेगा, मतलब उसकी दोनों आंखें छोड़ दीजिए। मतलब वो पड़ोसी के दोनों आंखें फोड़ने के लिए मेरी एक आंख फूट गई तो चलेगा। कितना बड़ा भयानक मत्सर है, क्योंकि सुख भोगने की कामना भोग, इसलिए मत्सर दूर, मत्सर से दूर रहना चाहिए। इसलिए सम दुख सुखम दीरम सूर्य तत्वाय कल्पते, धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते, धीर व्यक्ति। फिर आगे बात धीर, देखिए बार बार भगवान धीर बता रहे हैं, मतलब इसका कुछ शुरुआत ही भगवान यहाँ। वास्तव में देखा जाए तो ये श्लोक बहुत महत्व का है, अतिशय महत्व का है। यहाँ भगवान डायरेक्ट बता रहे हैं कि यदि आपको मेरा आशीर्वाद कृपा चाहिए तो धीर धीर तत्व धीर व्यक्ति बन जाइए, सहनशीलता बढ़ाइए। कितना सिंपल है, एक लाइन में आंसर है। आपको मेरी कृपा चाहिए क्या, भगवान पूछ रहे, आप बोलेंगे हाँ तो ठीक है सारे चीज बन जाए, बताइए सारी सेवा का भी दो घंटे से आगे देंगे, पूरा तत्व ध्यान दो आपके लिए आया कि नहीं आया, स्वयं चिंता बनाइए। तो इसलिए फिर कहते सम दुख, सम दुख सुखम धीरम, सम दुख सुखम, सुख और दुख में सम रहना चाहिए। धीर पुरुष जो रहते हैं इस प्रकार के समान रहते हैं, यदि हम सुख और दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में अनेक योनियों में हमको जाना पड़ेगा, हो सकता है कभी कभार नर्क में भी जाना पड़ेगा, कोई भरोसा करिए। कभी कभार ये भी रास्ता हमको मिल जाएगा, सिग्नल क्लियर। इसलिए यदि हम भोग ही भोग का सोचते रहेंगे सुख और दुख का, तो हमको कई शरीर प्राप्त होंगे, कई योनियों में जाना होगा, कई बार नर्क में घुसना होगा। तो इसलिए इसका जरा ध्यान रखिए, एक बात मुख्य ध्यान रखना है कि सांसारिक पदार्थों से जो प्राप्त होने वाला सुख है, जिसको हम हमेशा भोगने की इच्छा रखते हैं, सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होते हैं, वो वस्तु प्राप्त होते ही नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। जिस क्षण आपने वो वस्तु प्राप्त की सुख भोगने के लिए, उसी क्षण सेम टाइम उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, उसका संयोग मतलब प्राप्ति के साथ ही वियोग होना शुरू हो जाता है, मिलते से ही बिछड़ना शुरू हो जाता है। तो आप बताइए इससे क्या लाभ होने वाला है। कोई भी वस्तु हम प्राप्त करते हैं, हृदय में इतनी आसक्तियां होती है कि ये आसक्तियां इतने वस्तुओं के प्रति होती है कि कोई यदि हृदय का ओपन हार्ट कंजीन करके देखे ना, तो उसमें इतनी वस्तुएं दिखेगी, पूरे संसार पूरा ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं है वो सारी वस्तुएं के हृदय में दिखेगी। इसका अर्थ यह है कि हृदय में हमने केवल 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 वस्तुएं भर के रखी, मटेरियल भर के रखा हुआ है, ओनली मैटर ओनली मटेरियल। सोचिए कितनी डेंजरस बात है। और यह वस्तुएं केवल हमको सुख का योग और वियोग कराते रहती है, वास्तव में देखा जाए तो वस्तुओं का भी उसमें दोष नहीं है, दोष है हमारे विचारों का, हमारे मन का। इसलिए सुख और दुख को भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं। हमको अपना स्वभाव सुधारना है ना, है कि नहीं? पर क्योंकि हम वस्तुओं के सुख और दुख में पड़े रहे हैं, इसलिए हो रात में अपने स्वभाव को दो बार दो सुधारते जा रहे हैं। हमको पता ही नहीं चल रहा है, स्वभाव हमारा बिगड़ते जा रहा है धीरे 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 धीरे। एक दिन ऐसा होगा कि एकदम चिड़चिड़ापन हो जाएगा, धीरे धीरे जैसा उड़ जाती है। इसलिए भगवान कहते सो अमृतत्वाय कल्पते, यदि जो व्यक्ति अपने स्वभाव को बिगड़ने नहीं देगा, दुरस्त रहेगा, सुख और दुख को सहन करेगा, वो व्यक्ति को क्या होता है? वो व्यक्ति सो अमृतत्वाय कल्पते, उस व्यक्ति को अमृत प्राप्त होगा, मतलब दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। केवल एक संकेत की बात है, यदि हम इस बात को सोचे कि मृत्यु से अमृत की यहां बात की है कि अमृतत्वाय कल्पते, उस व्यक्ति को मृत्यु से भी भय नहीं रहेगा, मृत्यु आए जाए कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, सहन कर लेगा। परंतु मृत्यु के हम क्यों भयभीत रहते हैं? मृत्यु के समय जो कष्ट होते हैं उससे हम भयभीत होते हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में इसके बारे में विस्तृत वर्णन है कि मृत्यु के समय क्या होता है, इंद्रिय सुख करने से क्या होता है, वस्तु के सुख में पड़े रहने से क्या होता है, मनुष्य के कर्मा क्या चाहिए, अमृत की प्राप्ति कैसे मिले। तो जीवन भर इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा, जो जीवन भर इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा वो अत्यंत पीड़ा का अनुभव करता है, उसे रोषपूर्ण नेत्रों वाले यमदूत दिखते जीवन भर केवल वस्तु एकत्रित करता रहा, कभी टीवी लिया, कभी गाड़ी लिया, कभी घर लिया, कभी सोफा लिया, केवल वस्तु जीवन भर एकत्रित करता रहा, केवल वस्तु 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 वस्तु। तो अंत समय में उसको क्या होता है? बड़े भयंकर आंखों वाले यमदूत दिखते, ऐसे साधारण नहीं दिखते, बैठे भयंकर आंख वाले यमदूत दिखते हैं, डेंजरस। अभी तक उसका प्राण छूटा नहीं है, छूटने के पहले की बात करता हूं, छूटने के बाद की तो बात अलग ही है, वहां महाभयंकर है। अभी तक प्राण छूटने के पहले यमदूत का दर्शन और चर्चा होती रहती है, बहुत बार मेरी प्रताड़ना होती है, तो दीख रहे हैं। लेकिन जो भक्त होता है भगवान कहते हैं उसके पास हमेशा हृदय कार्ड रहता है, नहीं? जो भक्त होता है उसके पास हमेशा एटीएम कार्ड रहता है। और एटीएम कार्ड मतलब एनी टाइम माधव, एनी टाइम मुकुंद, एनी टाइम मर्सी। और एटीएम कार्ड दिखाया एनी टाइम माधव मुकुंद देता है विभिन्न, अरे इनको तो मुक्त करना है, भागो भागो जल्दी भागो। एनी टाइम यमराज जब यमदूत जब सामने आएंगे तो बड़े यमदूत का तो काम वो करेंगे ना, मुक्ति के समय यमदूत को आएंगे, उनका काम तो करेंगे। देखो आए तो देखेंगे कि अभी चलो इसको बांध के ले जाते, आंख बड़ी करना है, इनको डराना है, इस प्रकार की वो तैयारी रहते हैं। तो भक्तगण के पास उसको तुरंत एटीएम दिखेगा, जैसे ही एटीएम देखा वो इंटरनेशनल नहीं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कार्ड है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो यूनिवर्सल कार्ड देख लेगा। जैसे यूनिवर्सल कार्ड देख लेगा उसकी आंख जरूरी बंद हो जाएगी। एटीएम एक प्रकार के है ना, ध्यान में रखिए, एनी टाइम माधव मुकुंद और एनी टाइम मर्सी एक प्रकार का कार्ड है, और दूसरे प्रकार का जो कार्ड है ऑल टाइम माया। तो जिसके पास दूसरे प्रकार का कार्ड है ऑल टाइम है माया वाला, जैसे ही वो कार्ड देखा है तो यमदूत उसको दो आके बड़ी नहीं करेगा, चार आके दिखाएगा उसके वो भी अच्छा इसके पास दूसरा कार्ड है, मैं सोचे इसके पास पहले अच्छा कार्ड है, इसके पास तो ऑल टाइम माया वाला कार्ड है, चलो इसको दिखाते हैं माया क्या होती है। तो यमदूत उसका रखता और पक्का करते हैं, तो तारीफ करके उनको ले जाते हैं। इसलिए श्रीमद भागवतम के तीसरे बहुत सारे विशेष कमरे के सारे अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन है, आप उसको देख सकते हैं। भक्त के पास किस प्रकार का एटीएम रहता है, याद देखिए ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज ने दुख को भी सहन किया, सुख को भी सहन किया, भोग नहीं किया, क्या किया सहन किया, तो उनकी मृत्यु आई, मृत्यु तो सबको आती है, मृत्यु तो सभी को आती है ना, तो उनकी मृत्यु आई, तो उनको वरदान था, वो भगवान के भक्त थे, पर मृत्यु तो शरीर तो सबको छोड़ना है, तो उनकी इच्छा हुई 36,000 वर्ष अपना राज्य पूरा किया, और फिर उनकी इच्छा हुई कि भगवान जाना चाहिए। लेकिन यमदूत कभी कभी कंफ्यूज रहते, घूमते रहते हो तो इधर उधर मृत्यु, वो मृत्यु के रूप में वहां आ गए, जैसे वो मृत्यु के रूप में आए, शास्त्रों में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है, ध्रुव महाराज ने अपना पैर उसके सर पे रखा, क्योंकि उनको लेने के लिए भगवत धाम से देवदूत विमान लेके आ रहे थे, विमान खड़ा हो गया, विमान में चढ़ के बैठने के लिए उन्होंने मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख के विमान में आरूढ़ हो गए। तो भक्त के लिए कोई मृत्यु यमदूत ये सब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो उसके पास एटीएम ओरिजिनल डुप्लीकेट एटीएम नहीं, ओरिजिनल एटीएम है। तो इस प्रकार से हमको भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तो आप पूछेंगे भक्त का मृत्यु नहीं आती है क्या? भक्त मरता नहीं गया है कि नहीं? भक्त को भी मृत्यु आती है, अभक्त को भी मृत्यु आती है, मृत्यु सबको आती है। इस जगत का नाम क्या है? मर्त्यलोक, स्वर्गलोक, पाताललोक और मर्त्यलोक, भूस्वः। तो भूलोक को मर्त्यलोक भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे जो आएगा वो शरीर छोड़ेगा, गारंटी। तो शरीर तो भक्त को भी छोड़ना है, अभक्त को भी छोड़ना है, दोनों को शरीर का त्याग करना पड़ता है, शरीर छोड़ना होता है। पर जैसे बिल्ली आप यदि देखें, बिल्ली अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाती है? मुख में पकड़ती है, दांत में ऐसा ऐसा पकड़ के ले जाती है। और बिल्ली को जब भूख लगती है तो चूहे को भी पकड़ती है, चूहे को भी खाती है, कैसे पकड़ती है चूहे को? उसी प्रकार के है कि नहीं? मुख से ही पकड़ती है ना, हाथ से नहीं पकड़ती है। चूहे को भी पेशा महाराज कई बार इसका उदाहरण दिया है, जो बिल्ली चूहे को भी मुख में ले लेती है और अपने बच्चे को भी मुख में लेती है यहां से वहां रखने के लिए, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, घबरा जाता है। बच्चे के प्रति बिल्ली के अंदर प्रेम भाव है और बच्चे को भी बिल्ली के प्रति प्रेम भाव है, पर जो बच्चा है वो देखता है कि ये तो मेरी माता है कि नहीं, ये तो मेरा सारा भरण पोषण करने वाली, ये सब कुछ मेरी तो यही है, और चूहा होता ये तो मेरी शत्रु है, खा जाएगा तो इसको खा जाती है। इसी प्रकार से इस युग में, इस संसार में, इस मर्त्य लोक में मृत्यु हम सबको आएगी, पर जो व्यक्ति भगवान को काल रूपी भगवान देते कि मैं ही समय हूं, है कि नहीं? मैं काल व्यक्ति मैं ही समय हूं कहते हैं, तो भगवान को जो व्यक्ति सोचती ये तो मेरे परम पिता है, काल उनका रूप है, एक मेरे पिता है। तो जब वो भक्त के अंदर यह भाव होता है तो वो परम पिता उस भक्त को कैसे ले जाएंगे? अपने बच्चे के जैसे। और जो उनके प्रति उस काल के प्रति सजग न रहते हुए, उनके प्रेम भाव न रखते हुए द्वेष भाव रखता है कि मैं सब कुछ हूं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इस प्रकार से जो देश भाव रखता है उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, सूर्य के बेटा काल उसके उठा के ले जाता है। ठीक है, तो भक्त भगवान को पूर्ण भाव से देखते हैं हमेशा, इसलिए उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका जो इंद्रियों में भ्रमण है वो रुक जाता है ना, कर जाते हैं। देखिए मनुष्य शरीर को इतना होता है साधारण मत समझिए, क्योंकि यही वो शरीर है जिसकी मदद से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। साधारण है क्या, इसी शरीर से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्या शरीर साधारण है, दूसरे कोई शरीर से नहीं कर सकते, इसको मामूली समझना चाहिए क्या, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसको पशुओं के जैसे जीवन में बिताना चाहिए मामूली समझ के, केवल विषय भोगों में लगे रहे और बस जैसे पशु रहते हैं उन्हें करते रहे। अरे इसी शरीर में हम जा सकते, दूसरा कोई शरीर बना ही नहीं है संसार में जो हमको दिव्य ज्ञान दे सकता है, दिव्य भक्ति दे सकता है, भगवत प्रेम दे सकता है, दूसरा कोई शरीर नहीं बनाया आज इसकी गारंटी समझ लीजिए, ना रोबोट बनाया ना क्या कहते हैं सैटेलाइट बनाया, क्या कहते हैं सैटेलाइट के लिए भेज रहे उनको बोला वो तो नहीं देख सकते सैटेलाइट नहीं जा सकता, जो एक बार चांद पे जा गया वो जीवन भर पागल बना रहा हुआ आदमी सैकिक हो गया, वो ऐसा मैंने सुना है मुझे पता नहीं है, अब किसी ने हमको बताया कि वो व्यक्ति मून मिशन पे ज्यादा सबसे पहला उसने वहां मून वगैरह देखा तो उस दिव्य क्या क्या देखा तो उसको सहन नहीं कर पाया तो पूरे जीवन भर बाद में वो अकेला रहता रहा और साइकिल जैसा रहता साइकिल हो गया। इंद्रिय जो है भौतिक इंद्रियों से सब देखने की क्वालिफिकेशन थोड़ी है, तो इसलिए जो भी है पर जो दिव्यता है जो हमारे जीवन का उद्देश्य है ये सारे ग्रह तारे को पार करके अब जो मिलियन डॉलर खर्चा करके उन्हें मिलियन को रफिक करते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, इससे अच्छा है कि अच्छे भक्त बनो, मन को स्थिर करो, शुद्ध आचरण करो, सदाचार युक्त जीवन जियो, भगवान का स्मरण करो, ये सारे ग्रह तारे सूर्य पूरे सौर्य मंडल को क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाओ, क्या जरूरत है सब मटेरियल में घोषे पड़े रहने से, करे नहीं जो जिसकी मति देती है कर भक्त ये सोचते हैं कि ये बहुत दिव्य विज्ञान है और इसका मुझे पालन करना चाहिए। मनुष्य शरीर को ही वो क्या समझते हैं बताओ, जो भौतिक संसार के लोग साइंटिस्ट और ये सब लोग ये यंत्र तंत्र बनाते हैं और मशीन बनाते हैं और रॉकेट और क्या क्या बना के उसके फेस के ऊपर, पर भगवान ने ऑलरेडी ये सारे रॉकेट बनाए हुए हैं, सारे रॉकेट ये सारे रॉकेट सीधा वैकुंठ गोलोक धाम पर उड़ के जा सकते मंत्र शक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, ये इतना दिव्य मॉडल बन चुका है हमने, अब जो रियल मॉडल ऐसे बनाए हुए हैं भगवान, तो हमको तो वो प्रयास करना चाहिए डायरेक्ट। तो भक्तजन इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं, वो अमृत जो है कम सके उनको अमृत प्राप्त है, भक्ति रूपी प्रेम रूपी अमृत, कथा रूपी अमृत, भगवान के नाम रूपी अमृत, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उदयरपि दृष्टो अंतस्यनयो तत्वदर्शिनी, तत्वदर्शिनी यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है किंतु सत्य अपरिवर्तित रहता है, उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। सोलहवां श्लोक इनका प्रवचन भी देर से चल रहा है, शरीर और शरीर के अंदर का जीव, इस श्लोक में वास्तविकतः सांख्य तत्व शुरू हो रहे हैं, सांख्य का दर्शन, सांख्य तत्व का अर्थ क्या है आपको अध्याय शुरू, इस अध्याय का नाम क्या है, हाँ सांख्य गीता का सार, उसका एक अर्थ यह है कि सांख्य तत्व इसमें है ना। सांख्य तत्व का अर्थ क्या है, सांख्य फिलोसफी का अर्थ है, फ्लैश बैक एग्जाम नहीं पड़ेगी। सांख्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सांख्य, सांख्य तत्व मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। दो तीन लोग तो मानते भी नहीं, वाई दिस मोर इज गिवन टू दिस चैप्टर। गीता का सार और उसी को सांख्य कहते थे, क्यों? नॉट वेरी परफेक्ट आंसर, कोई तो उत्तर दीजिए, समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे दूसरे अध्याय के करीब, पहले अध्याय का क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको पूरा, और दूसरे अध्याय के 5 श्लोक का भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा। दोनों क्वेश्चन पेपर 15 दिन में आंसर लिख के लाइए। सीधी तैयार है दूसरे अध्याय के अभी तक की, जिसके पास नोट्स नहीं है सीधी ले लेती है। पहले दिन से इस बात की चर्चा करें हम लोग, अज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, बोलिए बोलिए बिल्कुल बोलिए बोलते हम जानकर मिल जाएगा। हाँ मैं क्या रेडी बोलते रहता हूँ तो आपका ध्यान रहता है, आप बोलिए मैं सुनता हूँ। हाँ भगवान का अंश है, कहाँ पे नहीं है, हाँ हृदय क्या है, हृदय किसका भाग है, शरीर में क्या है, आत्मा है, आत्मा का शरीर से क्या संबंध है, कुछ है, इन दोनों का किसके साथ संबंध है, तीनों का आपस में क्या संबंध है, इसी को सांख्य कहते हैं। जीव शरीर भगवान, विशेषकर जीव और शरीर को, शरीर को समझे, जीव को समझे, भगवान को समझे, और इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इसका जो एनालिसिस है, इसका ध्यान आपने देखा पहले पहले शोर से क्या हो रहा है, शरीर और आत्मा की थोड़ी चर्चा हुई तो दूसरी चर्चा हुई, ओनली सॉल मेन सॉल स्पिरिट सॉल। शरीर शरीर में आत्मा आ गया, शरीर में आत्मा आ गई, रिफ्लेक्शन होते रहता है, शरीर तत्व अलग है, आत्म तत्व अलग है, फिर आत्मा इस शरीर में कर्म धर्म संयोग से आ गया है। अब इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसका जो एनालिसिस है, इसका जो विश्लेषण है, इसको सांख्य तत्व कहते हैं। और भगवान ने इसका नाम भी दिया है, गोपाल महाराज ने इसका नाम दिया है गीता का सार, सांख्य तत्व ही गीता का सार है, और वो सार ये है कि आई एम नॉट अ बॉडी आई एम अ सोल, ये मैं आत्मा हूं, मैं शरीर में हूं, यह समझने के लिए मुझे इन सब में क्या संबंध है समझना होगा, और ये संबंध को समझने की पद्धति को या विश्लेषण को ही सांख्य योग कहते हैं। अरे कितनी बार हुआ है ये हमारा, मेरे अंदाज से एक वर्ष में, एक महीने में 4 क्लास, एक वर्ष में कितने क्लासेस हो गए, 45 क्लासेस में से 35 क्लासेस में ये बात हुई शांति योग की बात, तो जब से दूसरा अध्यक्ष हुआ तब से चलेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। भगवत गीता बड़ा दिव्य ज्ञान है, मैंने कई बार बताया कि क्लास के बाद क्लास शुरू होता है, भगवत गीता का क्लास भगवत गीता का फ्राइडे का 2 घंटे का क्लास खत्म होने के बाद वास्तव में शुरू होता है। जब आपको उसको रिवाइज करने 1 मिनट तो लगता है, मैं तो पूरे के पूरे अध्याय 18 अध्याय कम से कम ज्यादा से ज्यादा 15 घंटे में रिवाइज करता हूँ। भर भर क्या है क्या है क्या है, ये तो केवल टाइटल का नाम है। 15 घंटा पूरे 18 अध्याय को रिवाइज करने के लिए लगते हैं, आपके पूरे अध्याय के लिए 15 घंटा लगी है 18 वर्ष के लिए। रिवाइज करना चाहिए नोट को, इसलिए तो हम इतना स्लो जा रहे हैं ना। लेकिन मैं तो अभी देखा हूँ पूरा सेक्शन अभी 2 घंटे में बस 30वें श्लोक तक पूरा सेक्शन है, 2.30 तक, 2.30 तक मैं अभी बैठा तो 2 घंटे में 30 श्लोक पूरे हो सकते होते हैं। संसार में ऐसा होता है, भगवत गीता का पारायण या प्रवचन होता है 5 दिन में, कभी कभी 1 ही दिन में भगवत गीता खत्म हो जाती है, हो सकता है। तो क्यों हम इतना क्यों कर रहे हैं, इसका कोर्स में सीधा तो रिवाइज करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो शरीर में आत्मा है, शरीर और शरीर के अंदर का जो आत्मा है इसका वर्णन इस श्लोक में है ना। क्या कहा है भगवान ने, तत्वदर्शनी ने निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है कि असत मतलब भौतिक शरीर का कोई स्थायित्व स्थिर का नहीं है। प्रभुपाद महाराज सभी कहते हैं शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। आत्मा नित्य है, वो कहते हैं असत का भाव नहीं और सत का अभाव नहीं। प्रभुपाद महाराज का वेरी फेमस कोट है, वेरी फेमस, असत का भाव नहीं और सत्य का अभाव नहीं। तो भाव का अर्थ है नित्य, मतलब असत्य नित्य नहीं, मतलब वो बदलते रहता है, कोई गारंटी नहीं है, बदलते रहता है। तो असत्य का कोई भाव नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, मतलब सत्य अनित्य नहीं है, मतलब नित्य है। वेरी फेमस कोट, सत्य क्या है, नित्य है। सत्य जो सत्य मतलब जो बदलता नहीं है, वह आत्मा। इस श्लोक में भगवान ने वास्तव में उपदेश करना शुरू कर दिया है, यह भगवान का उपदेश उपदेश शुरू हो गया है। बोल रहे हैं कि जिनको मरने का तुमको जिनका डर है, ये भीष्म द्रोण वगैरह ये शरीर के बारे में सोच रहे हो, तो ये अनित्य ही है, ये बदलने वाला है। तुम सोचे मत सोचो, इसे करो मत करना, वो जाएंगे जाना ही है। तो वास्तव में भगवान इस श्लोक से उपदेश शुरू कर रहे हैं और सांख्य योग इसी श्लोक से शुरू होता है। यह श्लोक सांख्य योग की शुरुआत है, इसलिए आगे के श्लोक में पूरी तरह से विश्लेषण है कि शरीर मतलब इंद्रिया क्या है, आत्मा क्या है। तो जैसे कि हमने बताया था शरीर क्या है, आत्मा क्या है, आत्मज्ञान प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो मैंने बताया था कि 5 कोष है, कौन से हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। जो आनंदमय कोष है वो हमको आत्मज्ञान तक पहुंचाता है, या हमको भगवान के प्रेम की अनुभूति होती है। पर ये पहले के जितने भी कोष है ये हमारे उस आत्मा के ऊपर के आवरण है। कोष मतलब समझे ना, कोष का अर्थ क्या होता है, ऐसा गोल, जैसे एक में एक पांच सर्कल, अंदर का फिर इसके ऊपर फिर इसके ऊपर फिर एक में एक पांच सर्कल, इनर इनर मोस्ट सर्कल, फिर इसके ऊपर का सर्कल, फिर इसके ऊपर सर्कल, फिर इसके ऊपर सर्कल, ऐसे 5 सर्कल जो इनर मोस्ट सर्कल है, सबसे अंदर का सर्कल है, वो क्या है? आनंदमय धातु, आनंदमय कोश। सबसे ऊपर का कोश क्या है? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब यह कोश शरीर के बारे में बताता है पूरा। ये शरीर की लेयर है, शारीरिक लेयर, शारीरिक स्तर पर सब कुछ बताता है। अन्न खाने से किस प्रकार के शरीर पर प्रभाव होता है, मतलब यह कोश अन्न खाने से बनता है। लेकिन इस कोश को नियंत्रण कौन कर सकता है? प्राणमय, इसके ऊपर का कोश है। अन्नमय के ऊपर का कौन है? प्राणमय, इसे पंच प्राण है। यह पंच प्राण यदि चाहे इनको नियंत्रित करेंगे तो अन्नमय कोश ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कभी कभी प्राण को नियंत्रित करो, क्योंकि प्राणों का काम क्या है? अंदर प्राण है ना, व्यान प्राण दान समान। तो ये जो पंच प्राण है, ये पंच प्राणों का काम है अंदर जितना भी फूड स्टफ है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको डाइजेस्ट करना, वहां कम वहां पित्त का बैलेंस रखना और एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करना। तो इस प्रकार से ये पंच प्राण हमेशा एक्टिव रहते हैं, वायु पंच एक्टिव रहते हैं। और यह पंच प्राण यदि कोई शारीरिक प्रॉब्लम होते हैं तो कई बार कहते हैं आप प्राणायाम करो। इसका अर्थ यह है कि प्राणायाम मतलब प्राण को नियंत्रित करने से शरीर नियंत्रित होता है, मतलब प्राण कोश जो है, प्राणमय कोश अन्नमय कोश को नियंत्रित कर सकता है। प्राणमय कोश के ऊपर क्या है? मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या करता है? प्राणमय और अन्नमय दोनों को नियंत्रित करता है, क्योंकि उसके भी ऊपर है, वो दोनों को नियंत्रित करता है। तो मनोमय का एक्चुअली हमारे जीवन में यदि हम इस कोश को अपना मित्र बना लेते हैं तो हम बड़े सुखी रहेंगे, और यदि हमने इसको शत्रु बना लिया बड़े दुखी रहेंगे, क्योंकि यह जो चाहे वो कर सकता है। यदि यह अच्छा है तो हमारा कल्याण करवा सकता है, यदि बुरा है तो हमको खड्डे में डाल सकता है। मनोमय कोश, इसमें विचार आचार एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन टेंशन आवेग वेग आवेग इम्बैलेंसेस अस्थिरता विचार ये सब इसमें रहता है। पर ये कोश इन दोनों को नियंत्रित कर सकता है। इसके ऊपर का कोश विज्ञानमय, वो विज्ञानमय कोश क्या करता है? इसमें शुद्ध अहंकार भी रहता है और इसमें बुद्धि भी रहती है, विवेक भी रहता है, स्मृति भी रहती है। तो ये अन्नमय कोश में जितना कुछ भंडार पड़ा हुआ है कचरा, इन सब को वो फिल्टर करता है। मतलब अन्नमय कोश के ऊपर विज्ञानमय कोश कंट्रोल करता है, उसको बोलता है कि भैया मन मिस्टर माइंड मेरा भी गोइंग, आप हमेशा बाहर ही जा रहे हो, आप हमेशा गलत दिशा में चलते रहते हो, कभी भी देखो तो आप और दिशा में एक रोड पे मत जाइए, बड़ा डेंजरस रोड है, आप इस दिशा में जाइए। ये कोश क्या करता है? मनोमय कोश को आनंदमय कोश की तरफ ले जाने के लिए प्रवृत्त करता है। पर ये जिसका कोश स्ट्रांग है वो भक्त है। विज्ञान, विज्ञान का अर्थ क्या है बताइए? कृष्ण जी ने बताया था भगवत गीता क्या है, भगवान ने क्या बताया? पहले 14वें श्लोक में क्या बताया? 13वें श्लोक में थ्योरी बताई, 12वें श्लोक में थ्योरी बताई, 13वें श्लोक में प्रैक्टिकल मतलब अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस मतलब विज्ञान। इतना मालूम मालूम है कम मालूम है क्या मालूम है क्या बताया कुछ बता दीजिए, अप्लाइड एप्लीकेशन ही नहीं है। तो विज्ञान मतलब एप्लीकेशन, तो विज्ञानमय मतलब वहां पे रियलाइजेशन होता है। इट इज नॉट दैट कि मैं सोच रहा हूं, समझ रही सोच रहा हूं, सोचते सोचते सोचने के लिए तो कुछ भी सोच सकते, हाथी भी खरीद सकते, सोच ये रियलाइजेशन का मैटर है, समझना अनुभव करना है तो वह विज्ञानमय, और जो अनुभव होता है तो वो आनंदमय भाषा, तो वो शुद्ध चेतना के पास पहुंच जाता है, अपनी शुद्ध चेतना के पूरे शरीर में प्रवाहित होती है तो इस शरीर का प्रकाश पड़ता है, वो व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इस प्रकार से ये शरीर, यहाँ पे जो बताया है शुरुआत सांख्य योग की, शरीर मन और आत्मा इनका ये प्रसिद्ध क्या है विश्लेषण। तो आगे के शुक्रवार से केवल विश्लेषण ही होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसका विश्लेषण होगा, मतलब हमारा मैं मेरा करूंगा, आप अपना करना, आप अपना करना, प्रत्येक व्यक्ति। तो अगले नेक्स्ट फ्राइडे से प्रत्येक व्यक्ति अपना खुद का स्वयं का विश्लेषण करना है। तो नेक्स्ट फ्राइडे से फिर ये हमारी जो है प्रयोगशाला बन जाएगी। जैसे भगवान ने बताया प्रयोगशाला पिछले श्लोक में था ना, कि प्रयोगशाला पिछले टाइम पे एक प्रयोग किया हमने, आज भी प्रयोग करना है क्या मतलब कैसा आ गया कैसा। तो पिछले समय हमने तुरंत प्रयोग किया ना, भगवान ने बताया कि इंद्रियों को नियंत्रित रखो, विशेषकर पुरुषोत्तम मास में। तो भगवान ने प्रैक्टिकल भी कराया हमसे, प्रसाद नहीं आया, एक बार प्रैक्टिकल नहीं है, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल है, दूसरे प्रकार का प्रैक्टिकल है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो प्रश्न पूछिए, क्या क्या जैसे बच्चा में करने का चल रहा है, कर्म योग मतलब यज करने की यदस्नाती यज्ञ होती नदाती, जो कर्म कर रहे मतलब शरीर से रिलेटेड। कर्म कौन करता है, आत्मा कर्म नहीं करता है, शरीर को कर्म करने का अधिकार किसको है, शरीर को है, मन को नहीं, मन को सोचने का अधिकार, तुमको नहीं सुनेंगे ओनली कर्म करने का अधिकार शरीर को। तो कर्म मतलब ओनली शरीर को रिलेटेड जो कर्म करते, मतलब हमारे इंद्रिय कर्म करते रहते हैं, पर वो इंद्रिय जब कर्म करते रहते तो जब तब जीवा, जब उस कर्म करते वक्त जब जीवा नाम लेती है, कृष्ण का नाम लेती है, तो वो कर्म योग बन जाता है। तो कर्म योग अलग बात हो रही है, ये शरीर इंद्रियों के ऊपर निर्भर है। और जो हम जिसकी सांख्य योग की बात कर रहे हैं, इसमें विश्लेषण है शरीर का, आत्मा का और ईश्वर का, भगवान का, इनके रिलेशनशिप का। ये सांख्य योग थोड़ा सा और डिटेल आगे बताया जाता है। दर्शन शास्त्र वो है जो कि ज्यादातर इंद्रियों के स्तर पर ही होता है। दर्शन शास्त्र मतलब हम भगवान का जो दर्शन करेंगे, चाहे मन से चाहे चक्षु से, तो इसमें मन भी इन्वॉल्व होता है, उसमें शरीर और मन है। और सांख्य योग में हम इन तीनों का विश्लेषण देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप, बेसिकली रिलेशनशिप, तीनों का आपस में रिलेशनशिप, जिसको भी संबंध ज्ञान कहते हैं, है ना। ज्ञान करते हुए सबसे महत्व का एक पार्ट जो है, पहला पार्ट है संबंध ज्ञान। तत्व दर्शन में जो होता है, तत्व मतलब तत्व मतलब भगवान के लिए तत्व शब्द बोला जाता है, तत्व दर्शन मतलब उनका वास्तविक दर्शन, भगवान का दर्शन इन ट्रू सेंस। तो तत्व दर्शन कैसे कहा जाता है भगवान को, तो कौन मेरा तत्व दर्शन कर सकता है, श्लोक है, जन्म कर्म से निधि योगी तत्वतः, जिनको तत्वतः जानता है। तो भगवान को तत्वतः जानना मतलब भगवान को एज ए कंप्लीट, जैसे भगवान इस युद्ध में बैठे हैं पार्थिव के रूप में, पर भगवान केवल पार्थिव नहीं, वृंदावन कृष्ण भी है, तो लीला भी करते हैं। तत्वता पूरे जन्म कर्म से युक्त हम भगवान को जानते रहते हैं, तत्वता आगे हो परिपूर्ण सारे कार्यकलाप जो तत्वता मुझे जानता है। तो भगवान के तत्व में सर्वश्रेष्ठ तत्व कौन सा है, नाम तत्व। नाम चिंतामन कृष्ण भगवान में इनमें कोई अंतर नहीं, वो सबसे सुप्रीम तत्व है भगवान का। इनके तत्व का यदि जानना है तो नाम में रुचि बढ़ाना है तो भगवान अपने आप को ऑटोमेटिक रिवील कर देंगे हमारे सामने। तो ये मैं ऐसा हूं, ये देखो दर्शन नाम से है ना। देखिए कपिल जी भी अलग है, वो टोटली अलग है, वो इससे कोई संबंध नहीं होता। एक सांख्य मंडल सांख्य और सांख्य गैर सांख्य से लेकर बेस्ट ऑन ओनली क्रिएटिव क्रिएशन। उससे हम इसमें जो भगवत गीता में भगवान ने जो बोली बड़ी विस्तार रूप से, और कोई प्रश्न है नहीं है तो महाप्रसाद है। हरे कृष्ण।